लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 और उससे उपजी आर्थिक मंदी के कारण पिछले 3 दशकों में पहली बार वैश्विक गरीबी में वृद्धि दर्ज किए जाने की आशंका प्रबल हो गई है। मानवीय राहत मामलों में समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के प्रमुख मार्क लोकाक ने एक चेतावनी जारी करते हुए इस वर्ष के अंत तक 26 करोड़ से ज्यादा लोगों के भुखमरी के कगार में पहुंच जाने का खतरा व्यक्त किया है और G20 समूह के देशों से ठोस कार्रवाई करने की पुकार लगाई है। उन्होंने विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों का आह्वान करते हुए कहा कि G20 समूह के देशों को अपनी मदद का स्तर व दायरा बढ़ाना होगा। उन्होंने इस अपील के तहत कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे निम्न आय वाले 63 देशों के लिए $10 अरब से ज्यादा धन राशि जुटाए जाने का आह्वान किया है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने आगाह किया कि ये बात सही है कि इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, लेकिन ये नहीं भूला जाना होगा कि पहले की चुनौतियां और संकट अब भी बने हुए हैं।
मेनी कंट्रीज स्पेशली इन अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट आर स्टिल रीलिंग फ्रॉम ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड अदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। कोविड-19 थ्रेटन्स।
अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई देश सालों से चले आ रहे हिंसक संघर्षों और मानवीय संकटों से जूझ रहे हैं, जहां कोविड-19 इन हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना सकता है। यूएन एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि पिछले साल 69 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार थे, लेकिन तालाबंदी और अन्य सख्त पाबंदियों से इस साल के अंत तक 13 करोड़ अतिरिक्त लोगों के भुखमरी के गर्त में धंसने की आशंका है। यूएन एजेंसी के महानिदेशक ने मानवीय राहत एजेंसी की उस योजना का भी जिक्र किया जिसके तहत 63 जरूरतमंद देशों में मौजूदा संकटों से निपटने के लिए सहायता प्रदान करने की पुकार लगाई गई है। विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों का आह्वान करते हुए मानवीय राहत मामलों में समन्वय के लिए यूएन एजेंसी ने कहा है कि G20 समूह के देशों को अपनी मदद का स्तर बढ़ाना होगा। इसके तहत निम्न आय वाले 63 देशों के लिए $10 अरब से ज्यादा धनराशि की अपील जारी की गई है।
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से टीकाकरण सेवाओं में आए व्यवधान की वजह से जीवन रक्षक वैक्सीन पाने वाले बच्चों की संख्या में चिंताजनक गिरावट दर्ज किए जाने की चेतावनी जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का कहना है कि इन रुकावटों और सुरक्षा चक्र टूटने से अब तक कड़ी मेहनत से हासिल हुई प्रगति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। टीकाकरण सेवाओं में व्यवधान के अनेक कारण बताए गए हैं। अनेक मामलों में ये सेवाएं जारी रहने के बावजूद लोगों की उन तक पहुंच नहीं है, जिसकी वजह घर से निकलने में हिचकिचाहट, परिवर्तन सेवाओं में रुकावटें, आर्थिक मुश्किलें, आवाजाही पर पाबंदियां और कोविड-19 से संक्रमित होने का भय बताया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
वर्ष 2020 के पहले 4 महीनों के शुरुआती आंकड़े दर्शाते हैं कि DTP3 यानी डिप्थीरिया, टेटनिस और काली खांसी से रक्षा के लिए जरूरी 3 खुराकें पूरा करने वाले बच्चों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। बीते 28 वर्षों में ये पहली बार होगा जब दुनिया DTP3 कवरेज के दायरे में कमी आने का सामना करेगी। DTP की तीसरी खुराक के लिए क्षेत्रीय कवरेज दक्षिण एशिया में पिछले 10 वर्षों में 12% तक बढ़ी है, मुख्यतः भारत, नेपाल और पाकिस्तान में, लेकिन यह प्रगति अब मुश्किल में है और इथियोपिया व पाकिस्तान जैसे देशों में अगर टीकाकरण सेवाएं जल्द बहाल नहीं की गई तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनॉम गेब्रेयेसस ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के इतिहास में वैक्सीन सबसे शक्तिशाली औजारों में एक है और अतीत की तुलना में अब कहीं ज्यादा संख्या में बच्चों का टीकाकरण हो रहा है, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण यह प्रगति जोखिम में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि नियमित टीकाकरण के चक्र से छूट जाने वाले बच्चों को होने वाली पीड़ा और मौतों को टाला जा सकता है, लेकिन समुचित कार्रवाई के अभाव में इसका असर कोविड-19 से कहीं ज्यादा हो सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने भारत के महाराष्ट्र राज्य में तेजस्विनी नामक ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया है, जिसमें करीब 10 लाख महिलाओं को घरेलू व्यवसाय विकास, तकनीकी कौशल और वित्त में प्रशिक्षण दिया गया, जिससे इन महिलाओं ने अभूतपूर्व व्यवसायिक सफलता हासिल की है। अब कोविड-19 संकट के दौरान ये महिलाएं बदलती जरूरतों के अनुसार अपने कामकाज में बदलाव लाकर व्यवसायों को आगे बढ़ा रही हैं। आइए सुनते हैं अंजू शर्मा से ये रिपोर्ट।
तेजस्विनी यानी एक कांतिवान महिला, एक सशक्त महिला। भारत के महाराष्ट्र राज्य में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनी 10 लाख महिलाएं वास्तव में सशक्त हैं, कांतिवान हैं।
महिला ये चार भिंतियार गुतलेली होती।
अतीत में विवाहित महिलाएं घर की चार दीवारों के दायरे में सीमित थीं। स्वसहायता समूह में शामिल होने के बाद ही मैंने जाना कि उन चार दीवारों से परे भी एक जीवन है और मुझे उस अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है।
हमसे घर हाथ बार पन लावा लगलो।
डेयरी किसान मंजुला गुरुनाथ के शब्द। मंजुला जैसी महिलाओं के घर की चारदीवारी के दायरे से बाहर निकलने का मतलब हुआ वित्तीय सफलता, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता। IFAD द्वारा वित्त पोषित इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाकर तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवसाय विकास कौशल और वित्त तक सदस्यों की पहुंच बनाई गई।
श्रोताओं, विश्व में जहां कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 15,06,57,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, वहीं कुल मौत भी 6,36,583 से ज्यादा हो गई है। इस बीच यूरोपीय संघ EU के 27 नेताओं ने 17 से 20 जुलाई तक चली बैठक के बाद 21 खरब का बजट मंजूर करने की ऐतिहासिक चुनौती पर सहमति हासिल कर ली है। यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच बजट और वायरस सुधार कोष पर बनी सहमति इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि कोरोना से जूझने के लिए इतने बड़े बजट पर सहमति जुटाने के लिए नेताओं में जबरदस्त मतभेद देखने को मिले थे। अधिकारियों ने कहा कि अपने इतिहास की एक बड़ी मंदी का सामना करने के लिए यह सहमति जरूरी थी। कोरोना संक्रमितों की संख्या के आधार पर अमेरिका पहला, ब्राजील दूसरा और भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में तो अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,88,000 हो गई है और मरने वालों की संख्या 30,600 से ज्यादा हो गई है। कोरोना महामारी के साथ साथ भारत के बिहार, असम और पड़ोसी देश नेपाल में भी मानसून की बारिश के बाद बाढ़ से हालात गंभीर हैं। UN प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने बताया कि भारत में असम और नेपाल में बाढ़ के कहर से लगभग 40 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और 190 लोगों के मौत होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र भारत सरकार की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रभावित समुदायों तक पहुंचने के प्रयासों में जुटा है और हेलीकॉप्टर के जरिए मदद भेजी जा रही है। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
कृपा वरदान अनुग्रह दो जो फिर मैं मुझे कर दो, जो तिर में मुझे कर दो, कृपा
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। झारखंड में एक ईसाई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पिछले 2 माहों में भारत में यह ईसाइयों की हत्या का 5वां मामला है। स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट में बताया कि उक्त 4 युवकों की पहचान नहीं हो पाई है, तथापि उनसे 25 जुलाई को खुंटी जिले के रेहड़ी गांव में मारी गई 25 वर्षीय सुमन मुंडा की मौत पर पूछताछ की जा रही है। 23 जुलाई को खुंटी के धर्माध्यक्ष विनय कंडुलना ने ऊका समाचार से कहा, यह एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि राज्य के इसी जिले में पिछले महीने ही एक और ईसाई व्यक्ति को मारा गया था। प्रशासन के साथ साथ नेताओं को भी इस पर ध्यान देना होगा तथा उचित कदम उठाना होगा। धर्माधीश कंडुलना ने कहा, किसी भी धर्म का अनुयायी ईश्वर की सृष्टि है और हमें सभी का सम्मान करना होगा, लेकिन कुछ निहित स्वार्थी समूह राज्य में विभिन्न धर्मों के बीच नफरत फैलाने के लिए अल्पसंख्यकों को लक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं जो अन्यथा शांतिप्रिय लोग हैं। गुमनामी का अनुरोध करते हुए एक स्थानीय पादरी ने अंतर्राष्ट्रीय ईसाई उत्कंठा संगठन को बताया कि सुमन मुंडा ने 6 साल पहले ईसाई धर्म का आलिंगन कर लिया था, जिसके बाद कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्रवादियों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। इसी बीच 25 मई को 38 वर्षीय विजय मांडवी का मृत शव छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव जिले के एक जंगल में पाया गया था। 14 साल के समारू मतकामी की हत्या धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा 4 जून को ओडिशा के नक्सल प्रभावित मलकानगिरी जिले के केंदुगुड़ा गांव में कर दी गई थी। 27 साल के रामजी मुंडा की 24 जून को झारखंड में खूंटी जिले में उनके गांव के बाहरी इलाके में अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। 10 जुलाई को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के पादरी मुंशी देव टंडो की माओवादी विद्रोहियों द्वारा कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। झारखंड आदिवासी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नाबोर एक्का ने ऊका समाचार से कहा, झारखंड में पहले कभी भी इस तरह की नफरत नहीं देखी गई थी, लेकिन अब यह अक्सर रिपोर्ट की जाती है। इसलिए हम सभी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और सामूहिक रूप से इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने गिरजाघरों के अपवित्रीकरण और आगजनी की बढ़ती घटनाओं की रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दर्शाते हुए भ्रम और घृणा के जवाब में समझदारी और प्रेम का आग्रह किया है। अमरीकी कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन ने कैथोलिक गिरजाघरों, प्रतिमाओं और अन्य धार्मिक प्रतीकों पर हमलों को दृष्टिगत रख बुधवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा, हमारा राष्ट्र सांस्कृतिक संघर्ष की एक असाधारण घड़ी से गुजर रहा है। मायामी के महाधर्माध्यक्ष थॉमस वेंस्की तथा ओक्लाहोमा सिटी के महाधर्माध्यक्ष पॉल कॉकली ने वक्तव्य में हाल के दिनों में धार्मिक स्थलों के खिलाफ अनगिनत हमलों पर खेद व्यक्त किया। इन हमलों में वह हमला भी शामिल है जिसमें फ्लोरिडा में एक गाड़ी चालक ने अपनी कार को एक गिरजाघर में घुसा दिया और गिरजाघर को आग के हवाले करने का प्रयास किया था। धर्माधीक्षों ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि हाल के सप्ताहों में प्रभु येसु मसीह और मां मरियम की कई प्रतिमाओं को या तो विरूपित कर दिया गया या फिर उनका सिर काट दिया गया। इसी सिलसिले में जुलाई माह के आरंभ में लॉस एंजलिस स्थित संत गैब्रियल मिशन चर्च को भी आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। महाधर्माध्यक्षों ने कहा, जो लोग इन कृत्यों को करते हैं वे या तो मदद के लिए रोते हैं अथवा लोगों को परेशान करने और घृणा फैलाने वाले होते हैं, जिनका मकसद लोगों में दहशत फैलाना होता है। यह स्वीकार करते हुए कि घटनाओं के पीछे की मंशा स्पष्ट नहीं है, महाधर्माध्यक्षों ने कहा कि वे जिम्मेदार लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमले इस बात का संकेत है कि समाज को चंगाई की नितांत आवश्यकता है। पाकिस्तान में विकलांग बच्चों की देखरेख करने वाली सिस्टर रूथ लेविस के निधन पर शोक मनाया जा रहा है। विकलांग लोगों की मदद हेतु अपना जीवन समर्पित करने वाली पाकिस्तानी धर्म बहन सिस्टर रूथ लेविस की सोमवार को कोरोना वायरस महामारी की जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई थी। कराची में अलग तरह से सक्षम विकलांग बच्चों की देखरेख को समर्पित दार उल सुकून नामक आश्रम की अध्यक्षा 77 वर्षीय सिस्टर रूथ लेविस की 20 जुलाई को कोविड महामारी से कराची के आगा खान विश्वविद्यालयीन अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। 8 जुलाई को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था तथा वेंटिलेटर्स पर रखा गया था। सिस्टर रूथ लेविस ख्रीस्त राजा को समर्पित फ्रांसिस्कन मिशनरीज धर्म संघ की सदस्य थी, जिन्होंने सन 1969 में हॉलैंड की सिस्टर गर्ट्रूड लेमेंस के साथ मिलकर विकलांग बच्चों की देखरेख के लिए दार उल सुकून की स्थापना की थी। सन 2000 में सिस्टर लेमेंस के निधन के बाद से वे इस आश्रम की अध्यक्षा रही थी। दार उल सुकून ने सिस्टर रूथ के निधन पर 21 जुलाई को एक बयान जारी कर कहा, उन्होंने ऐसे बच्चों की देखरेख में अपना जीवन व्यतीत कर दिया जिन्हें उनके अपने परिवारों ने त्याग दिया था, ऐसे बच्चों की देखरेख की जिन्हें उनकी विकृतियों और विकलांगता के कारण राक्षस कहा जाता था, ऐसे बच्चों की जिनकी दृष्टि एक आम आदमी को परेशान कर सकती थी, ऐसे बच्चों की जिन्हें लोग इसलिए देखने आते थे ताकि उन्हें अपने कार्यात्मक शरीर और मस्तिष्क का एहसास हो सके। सिस्टर रूथ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बयान में कहा गया कि सिस्टर रूथ इन सब बच्चों की मां बनी, ये बच्चे सिस्टर रूथ के लिए दुख, परोपकार और दया की वस्तु नहीं थे बल्कि उनकी संतान थे, प्रत्येक अद्वितीय, जिनका व्यक्तित्व संवारने में सिस्टर रूथ ने उदारतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल निधि यूनिसेफ एशिया ने चेतावनी दी है कि हाल की घनघोर वर्षा और बाढ़ से लगभग 40 लाख बच्चों का जीवन खतरे में पड़ा है, जबकि अन्य बच्चों पर कोविड-19 महामारी का खतरा मंडरा रहा है। यूनिसेफ के अनुसार बांग्लादेश, भारत, भूटान और नेपाल में कई हफ्तों की मूसलाधार बारिश, व्यापक बाढ़ और जानलेवा भूस्खलन ने लाखों बच्चों और परिवारों के जनजीवन को प्रभावित किया है। अनुमान लगाया गया है कि 700 से अधिक लोग मारे गए हैं। बांग्लादेश में 24 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें लगभग 13 लाख बच्चे शामिल हैं। साथ ही 5,48,816 से अधिक परिवारों ने अपने घरों को खो दिया है। भारत में लगभग 24 लाख बच्चों सहित 60 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नेपाल में 9 जुलाई से 20 से अधिक जिलों को प्रभावित किया है। 100 से अधिक लोग मारे गए हैं, 48 लापता हैं, जबकि 87 घायल हैं। 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से आधे बच्चे हैं। लगभग 7,500 लोग विस्थापित हो गए हैं। भूटान में परिवहन और संचार माध्यम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।